نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة نساء آیت نمبر 15 سے 23 تک ہمارا آج کا سبق ہے اور یہ چوتھے پارے کا آخری لیسن ہے اس سے پہلے کہ براہ راست ہم آیتوں پہ چلیں تھوڑا سا آپ کو اب یہاں جو باتیں آنے لگی ہیں اس کا خلاصہ دوں گی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جس معاشرے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھیں وہاں کا ماحول کیسا تھا سورۃ نساء جیسا کہ آپ نے شروع میں اس کے انٹرو میں سنا کہ یہ مدنی سورت ہے اور غزوہ احد کے بعد کے دور میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جب مکہ میں تھے تو مکہ میں کفار کا غلبہ تھا اور وہاں کا قانون غیر اسلامک تھا آپ کہہ لیجئے جب مسلمان مدینہ میں آئے تو مدینہ کی حیثیت ایک مسلم مملکت کی بن گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاموش قسم کے حکمران کا درجہ مدینہ میں ہجرت کرتے ہی مل چکا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا 13 سال کے صبر کا اللہ کے نبی کے مزاج کو دیکھیں تو لیڈرشپ سمجھ آتی ہے کہ 13 سال تک آپ وہی شخصیت تھے جو بعد میں آ کے لوگوں نے مدینہ کے دور میں دیکھی لیکن آپ نے مکہ میں کسی قسم کی کوئی قانونی تبدیلی یا کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن کوئی ہڑتال کوئی مطالبے منانے کے نام پہ لوگوں کو جمع کرنا یہ نہیں کیا صرف 13 سال تک آپ نے کردار سازی کی یہ جملے لکھیں گے تو آج کے مسئلوں کا حل ہے آپ کے سبق میں معاشرہ جو تھا اس دور کا دو بڑی خرابیوں میں پوری طرح سے ملوث ہو چکا تھا نمبر 1 شراب اور نمبر 2 زنا مکہ ہو کہ مدینہ ہو جب اسلام نہیں تھا تو معاشرے کی اتنی بری حالت تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 95% لوگ زنا کی لت میں مبتلا ہو چکے تھے چند لوگ ہوں گے گنتی کے جو اس خرابی سے بچے ہوئے تھے اور جہاں بھی شراب ہوگی وہاں زنا ضرور ہوگا یہ جملہ بھی لکھیے گا جب آپ مکہ میں تھے تو وہاں بھی یہی کچھ تھا لیکن آپ خاموش رہے آپ اس کو آج کے اس حالات سے جوڑیں گے تو پھر آپ کو زیادہ دلچسپی ہوگی آج ہم میں سے بہت سارے لوگ جو درد رکھتے ہیں انسانیت کا اور امت کا تو اپنے ارد گرد بے حیائی اور کرپشن کی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں آپ بھی سنتے ہوں گے میرے تک بھی پہنچتی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا اور جب غیر مسلموں کے ساتھ مکسنگ ہوتی ہے اختلاط ہے خاص طور پہ ہم لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں جو بیسیکلی تو منورٹی ہوتے ہیں اقلیت ہوتے ہیں اس ملک میں اور جو وہاں کے لوکلز ہیں جس کو آپ کہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ان کا مذہب کچھ نہیں ہوتا یعنی آج کا دور لے لیجئے تو ناروے اپنے آپ کو بے مذہب ملک کہتا ہے اسی طرح سے آپ اگر یو کے کو دیکھیں امریکہ کو دیکھیں تو وہ خود کو ایک کرسچن ملک کہتے ہیں یعنی جب ہم غیر مسلم ملک کے اندر ہوتے ہیں تو حالت اور بھی بگڑ جاتی ہے کیوں کیونکہ غلبہ تو ہر طرف ہمیں غیر مسلمز کا دکھتا ہے آج کے دنیا کے بڑے بڑے مہذب ملک جو ہیں ہر شہری کو اس کے مذہب کی آزادی دیتے ہیں انگلش میں اس کو جو کہا جاتا ہے وہ ریلیجس فریڈم ہے امریکہ میں یہ اتنی زیادہ ہے قانوناً بتا رہی ہوں قانوناً امریکہ میں ریلیجس رائٹس اس حد تک ہیں کہ اگر کوئی ورکر مطلب جمعے کی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کا باس یا آپ کی زبان میں شیف اس کو روک لے تو وہ اس پہ سو کر سکتا ہے مقدمہ کر سکتا ہے جس جگہ آپ لکھ دیں یہ بات کہ اٹس مائی ریلیجس رائٹ یا اٹس مائی ریلیجس فریڈم قانون آپ کو آزاد کر دیتا ہے یہاں تک کرٹسی کا دور ہے الحمدللہ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب ایسے ملکوں میں جا کے بستے ہیں تو اخلاقی طور پہ پابند ہو جاتے ہیں یعنی قانون ان کو سپورٹ کر رہا ہے ملک ان کو کچھ نہیں کہتے لیکن مسلمان خود اپنے ہاتھوں ہار جاتے ہیں اور نقصان کیا ہوتا ہے کسی سسٹر نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک کام کرتی ہیں تو ان کو سکارف میں دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں بھی لینا چاہتی ہوں تو میرے سے تو نہیں ٹکتا تو انہوں نے جب پوچھا بات بنی تو لمبی کہانی میں سے بات سے نکلی کہتی میرا ہسبینڈ مسلمان ہے اور 20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں سکارف ایسی لینے کو دل کر رہا ہے اور وہ نان مسلم ہے اور بچیاں بھی اور وہ خود بھی اور وہ کہتی میری 2 بیٹی ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتی ہیں ہمارے ہسبینڈ نے 20 سالوں میں کبھی ہمیں نہیں روکا میں کیا پہنوں میں کیا کروں میری بچیاں کس حال ہو لیے میں ایون دے بوتھ ہیز बॉयफ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को भी पता है, बट ही नेवर से एनी थिंग टू अस. अब आप बताइए कि इससे बड़ा एक अलमिया क्या हो सकता है. और वो एक नॉन मुस्लिम औरत इस्लाम की कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन और वो पिक भी खाता है. और जो कुछ भी उनकी कहानी है, आप लोग ऐसे किरदार देखेंगे. अब आप मुझे बताइए कि इस किस्म की चीज़ें जब किसी सोसाइटी में होंगी तो इसका मतलब क्या है कि जहनी तौर पर मغلوب है, सरेंडर्ड मेंटली. जब हम जहनी तौर पे मकलूब होते तो हम तो अपनों में भी जाके सर नहीं कवर करते, कहते हैं लोग कहेंगे बड़ी लगती हो, मासी लगती हो. हम अपनी शादियों में जाते हुए परेशान है, कोई सिस्टर है हमारी यूके की तो वो पाकिस्तान गई तो उनका 5 मिनट की ऑडियो थी मेरे पास. खैर मैंने वक्त निकाल कर सुनी जब भी मौका मिला, तो एक ही गम था उनका कि मैं वहां से इधर आई हूँ. हर वीकेंड पे खानदान में कोई शादी है और वो माशाल्लाह बिल्कुल अल्ट्रा मॉड थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी जिंदगी में जब कुरान दिया तो वो माशाल्लाह पता करती हैं अपने हिसाब से जितना भी वो अच्छे से अच्छा कर सकती हैं. कहती है पाकिस्तान आई जिस दिन से आई हूँ कोल्ड वार है, इन लॉज में गई हूँ तो वहाँ शादी है तो मैं नहीं जाती, तो मेरे मियाँ मेरे नाम पे नहीं जाते, तो इन लॉज मुझे बातें कर रहे हैं. मेरे मियाँ को कोई कुछ नहीं कहता, उनका नाम लेता कि ये कहती है तो वो नहीं जाता. और अगर मैं चली जाऊँ निकाब में, निकाब भी वो इसी तरह का लेती हैं, कोई बहुत टिपिकल निकाब नहीं लेती लेकिन कवर करती हैं अपने आप को प्रॉपरली, जाके अलग बैठ जाऊं तो आके मुझे कहती हैं तुम इधर कैसे हो. वहां से उठ के दूसरे शहर में आई हैं अपनी फैमिली में तो कहती यही कहानी है कि वो, यानी उनका इशू क्या था कि मुझे यहाँ आके अपना निकाब अपना पर्दा संभालना मुश्किल हो गया. और टोटल सेग्रीगेटेड शादियों में हम अपने मुल्कों में कई दफ़ा चले जाते हैं जहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ टोटल मिक्सिंग है और इतना इख्तलात है शादियों में कि हम बिल्कुल ऐसे किनारे पे पड़े हुए हैं. अब आपको ये जो दो तीन चीज़ें मैंने बताई और इससे भी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, तो यहाँ से आप उठिए, 2017 आ गया आज, आप पीछे चले जाइए जहाँ ये प्यारा सा कुरान नाजिल हो रहा था. हालात इससे भी वर्स्ट थे. जब कोई बच्चा पैदा होता था उसका नसब नहीं पता चलता था. ज्योतिषियों को बुलाते थे, वो जो फीचर्स को देख कर बच्चों को पहचानते थे कि किसका बच्चा है. 10-10 किस्म के जिना और शादियां वहां मारूफ थी. हस्बैंड खुद अपनी बीवियों को शहर के बड़े बड़े लोग जैसे सियासतदान या आर्टिस्ट कह ले उनके पास भेजते थे कि जाओ उनसे ताल्लुक करो और बच्चा लेकर आओ और बच्चा अला नसब का होगा. है बच्चा देखने में शौहर का, लेकिन वो खानदानी के अंदर वजाहत आ जाएगी. ये कुछ हालात थे. 10-10 लोग एक एक औरत के से बुराई करते थे. अब आपको ये सारी कहानी इसलिए मैं सुना रही हूँ कि आपको भी तबलीग भी करना है और आज के मसलों का हल. अल्लाह ताला ने प्यारे रसूल के जरिए जो इनकलाब पैदा किया, टोटल तो 23 साल है ना, उन 23 सालों में से 13 साल तक आपने जुबान मुंह में रखी, जिसको आप कहें ज़िप द माउथ. आपने पूरे 13 साल में मक्का में इन बातों पे जाके ना फतवे दिए, शर्म करो, हया करो, अल्लाह का खौफ करो, गरक हो जाओगे, नारे नहीं लगाए, कुछ नहीं किए, सिर्फ खामोशी से बैठकर वो ईमान वाले दिल तैयार किए कि जो कल साथ मिलेंगे तो फिर हम एक निज़ाम बनाएंगे. यही है अल्लाह के नबी का कारनामा और मुझे यही समझ आया. पत्थर के दिल नहीं थे सहाबा, हम जैसे इंसान थे. और मज़े की बात है कि ईमान लाने से पहले सहाबा में से अक्सरियत शराब पीती थी क्योंकि हराम नहीं थी. अब जैसे आज कोई कोक पीता है तो पिए, गुनाह तो नहीं है ना क्योंकि हराम नहीं है. कोई ऑरेंज जूस पीता है तो पिए, हराम तो नहीं है ना. लेकिन अल्लाह के नबी ने उनके दिलों को ऐसे तैयार कर दिया कि जब उनके दिल तैयार हो गए, एक एक करके ये चीज़ें ग्रेजुअली, यानी जिसको आप उर्दू में कहें तो तदरीजन, अल्लाह के नबी के ज़रिए से जहन साजी करवा के एक एक चीज़ को अलग किया गया. नतीजा क्या निकला? जब वो फाइनल हुक्म आता तो फिर कोई एक भी आगे से क्वेश्चन नहीं करता था. हज़रत आयशा का अपना कॉल है कि अगर शराब शुरू में हराम हो जाती और सूद शुरू में हराम हो जाता तो जब इसकी हुरमत आई तो बहुत थोड़े लोग इस पे अमल करते. लेकिन आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सूरत निसा में वायते आने वाली हैं कि जिस दिन शराब हतमी तौर पे हराम हुई तो मुंह से लगे हुए जाम तोड़े. बड़ा बड़ा कंसाइनमेंट आया पड़ा और जब कहा कि शराब हराम हो गई तो मटके फोड़े गए और कई दिन तक मदीना की गलियों में शराब जो थी वो उसकी बू आती रही. हर साल जब बारिश होती थी तो वो फिर शराब की बसांत आने लगती थी. अगर आज के लीडर्स को और आज के मजहबी रहनुमाओं को और आज के हम सब आम लोगों को चाहिए कि ये सोसाइटीज पाक हो. आज आप देख लीजिए हमें जाहिर में जो गंदगी दिखती है वो सबको पता है. इसका भी हल यही है, किरदार साजी, अपने मुसलमानों का तज़किया किया जाए, अपने मर्दों की आंखों में हया हो, तो यहां से अब जो ये रुकू हमारा शुरू होने लगा है ना, ये सोसाइटी की तत्हीर, क्लीनलीनेस ऑफ अ सोसाइटी। आप इसको लिखिए, वी वॉन्ट टू क्लीन ओस्लो। आप कहेंगे ओस्लो तो पहले ही बड़ा क्लीन है, ज़ाहरी क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह, कचरा नहीं है, गंदगी नहीं है, ट्रैश नहीं है, सपर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जहनी पाकीज़गी। मैं ट्रिप पे थी अभी, तो रास्ते में सबसे खूबसूरत मौका दावा का होता है, तो जब यहाँ से ओस्लो से हम जा रहे थे फ्रांस, तो मेरे साथ एक यंग लड़की थी, तो बातें शुरू की, बात की, तो यंग से मेरा इतनी यंग नहीं, 30-35 में ही होगी, बट उसने आगे जाना था बहुत दूर, साउथ अमेरिका जाना था, उसका स्टॉप था फ्रांस में ना, तो बातें शुरू की, मैंने पूछा तुम मैरिड हो? कहती नो, तो बट आई हैव बॉयफ्रेंड। तो मैंने कहा अच्छा, मैं उससे बातें शुरू हो गई, मैंने कहा कि हाउ लॉन्ग यू आर विथ हिम, तुम उसके साथ कब तक हो, कब से हो? कहती 2 साल से हो। तो मैंने कहा यू डोंट फील कि यू नीड टू गेट मैरिड, तुम्हें शादी करनी? कहती आई डोंट नीड टू। और मुझे वो समझाने, वो डेनमार्क से थी लेकिन ओस्लो से फ्लाइट लेके आई थी, कहेंगे यू नो इन डेनमार्क देर आर सेम राइट्स फॉर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड, लीगली राइट, समझ रहे हैं आप? उसका ख्याल था मैं क्यों शादी करूं, गवर्नमेंट ने कंसिडर किया हुआ है कि हस्बैंड लीगल हो, ये हो, वो दिस। खैर, मैंने कहा यू डोंट हैव द फियर, तुम्हें ये डर नहीं आता कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा? फिर मैंने उसे पूछा कि क्या ये पहला है ये कोई भी? कहती नहीं, पहले भी था एक और, ये तो 2 साल से है। तो मैंने कहा यू नो व्हाट इज द डिफरेंस, फर्क क्या है हस्बैंड और शौहर, वाइफ में और बॉयफ्रेंड में, कि हस्बैंड छोड़ते नहीं है, तो जो दूसरे होते हैं वो छोड़ देते हैं। आपको पता है कि जवाब क्या? हम क्यों बने, हमारा भी तो दिल बदल सकता है। वो तो बड़े हैरान होते हैं, आप 15 साल से एक ही मर्द के साथ जी रहे हैं, सुभान अल्लाह, आपका दिल नहीं भरा एक दूसरे से, यू आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ। ये गंदगी होती है। वो कहते हैं ना, जो ना था खूब वो ही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। और मुझे किसी ने इन्हीं दिनों में, अपने आप कहेंगे गोरे, इनकी मिसाल तो वाकई नहीं हमें देनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हलाल हराम का कोई फर्क ही नहीं है। मुसलमानों में से, मुस्लिम्स में से आप मुस्लिम पेरेंट्स इस हद तक आ गए हैं कि शुक्र करो कि लड़की ने लड़का पसंद किया, लड़की नहीं कर ली। दूसरा मुसलमान पेरेंट्स का आज के दौर में शुक्राना क्या है कि शुक्र करो मेरी बेटी ने मुसलमान लड़का चूज किया, काफर तो नहीं कहिए, दूसरा शुक्राना। और इससे आगे आप खुद समझ लें। तो ये गंदगी जहनी होती है। अफसोस की बात है कि जाहिर की गंदगी सबको दिखती है, गटर उबलते हुए दिखते हैं लोगों को, ट्रैश दिखता है मुल्कों का, लेकिन जो जहनी गंदगी है वो नहीं दिखती। और याद रखिए कि हमारे बच्चे इस गंदगी में पल रहे हैं। मैं जो बच्चों को देखती हूँ और जो उनकी सोचें और यंग से मिलती हूँ, बिलीफ में मैं कहती हूँ कि अगर समझदार माएँ हो ना, तो इन बच्चों को अमली मिसालें देकर दिखा सकती हैं। यानी एक माँ है, वो इतनी परेशान है कि आखिर मुझे उसने फोन पे उसने कहा कि आज मैं हमारे बच्चों के स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह मुसल्लत किया जा रहा है होमोसेक्सुअलिटी को आज हमारी नस्लों के जहन पे, आज आज तो मैं उसका भी जिक्र आना है अभी, कि मैंने कहती अपने बेटे को असाइनमेंट दिया है कि तुमने स्कूल में स्पीच किस पे करनी है, कौम लूत पे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम हजरत लूत का किस्सा मैं पढ़ाऊंगी। वो कहती मैं इनडायरेक्टली अपने बच्चे को सिखाना चाहती हूँ कि ये वो जुर्म है जिसपे एक पूरी कौम डिमोलिश कर दी गई थी। तो आज ये हालात है कि आप चुप नहीं कर सकते, आपके बच्चों को आपसे ज्यादा पता है गेजम का, उनको आपसे ज्यादा फितने हैं, और वो अब अपने बच्चे को इस बहाने सिखाएंगी, और वो बच्चा जाके स्टेज पे 5-6 मिनट की तकरीर करेगा कि व्हाट हैपेंड विद द कौम लूत, और ये बच्चा मेरे लिए 13-14 साल का। यदि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते जिन सोसाइटियों में हम लोग उठते बैठते हैं, तो हमारा अपना एक छोटा सा एक नटशेल बना हुआ है, हम उसमें रोज खुश हो जाते हैं, बाहर देखे तो बहुत कुछ है। तो यहां से इस्लामी सोसाइटी को कैसे पाक किया जाता है, उसके असूल है। यहां शराब की बात नहीं है आज के सबक में, वो आगे आएगी, पीछे गुजर भी चुकी है सूरत बकरा में कुछ आयतें। यहां से जो आयतें ना, उसमें जिना को खत्म कैसे किया जाए। अब एक तरीका क्या था कि अल्लाह ताला फौरन से कहते हैं कि जिना हराम है, और जिना करने वाले को कोड़े मार दो, और मैरिड है तो उसको रजम कर दो, और 1 साल के लिए जिला वतन कर दो अगर अनमैरिड है, और उनकी गवाही ना कबूल करो, तो फिर क्या होता? कोई ना लेता। ये जो आयतें आज हम पढ़ने लगे ना, ये जिना की हुरमत की फर्स्ट स्टेप की आयतें हैं, समझ आ रही? यानी फर्स्ट स्टेप ले किस तरीके से उन मसाइल को यहां डिस्कस किया जा रहा है, और आप मदीना में इन चीजों को पेश कर सकते थे, क्योंकि आपके साथ 300-400 लोग बन चुके थे आपकी टीम के, जो इन मसाइल को लेकर निकलते और जब जो कहा जाता वो समय नवा और अताना करने लगते। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह अब आयत को शुरू करेंगे 15 की, जिससे आप लिख लें क्या मिलेगा हमें किसी सोसाइटी में सेक्सुअल डिसऑर्डर को कैसे ख़त्म किया जाए, जिनसी बेराह रवि है तो क्या किया जाए और किस तरीके से एक एक करके लेके चला जाए। असल इसका जो ततिमा है ना एंड, वो सूरत नूर में होगा। सूरत नूर वो सूरत है जिसमें हतमी तौर पे जिना को खोल के रखा गया और वो पूरी सूरत का टॉपिक ही जिना है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे 18वें सिपारे में इंशाल्लाह ताला। मुआशरती मामलात में हम सूरत निसा, सूरत अहजाब, सूरत मायदा और सूरत नूर में इनके थोड़े थोड़े जिक्र पढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब अल्लाह ताला की हिकमत देखिए, सूरत अहजाब और सूरत नूर को जाके आखिर के पारों में रखा है। सूरत नूर आएगी 18वें पारे में और सूरत अहजाब आएगी जाके 23वें पारे के करीब। वजह क्या है कि पहले पढ़ते पढ़ते अपने जेहन बना लो। अब यहाँ सूरत निसा है, फिर मायदा आएगी, फिर आगे और चीज़ें होंगी, तो मैं इंशाल्लाह खुलासे के तौर पर ये दो आयतें, आयत 15 और 16 रखती हूँ, फिर इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो निकलती हैं वो करेंगे। अब आप मेरे साथ आयत की तरफ देखिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ یہاں میں رکوں گی پہلے لفظ پہ، اگر آپ غلط نہ پڑھیں نا تو آپ اس کو واللاتی، یہ لام کی کھڑی زبر ہے نا، اس پہ ہائی لائٹ کیجئے، کیونکہ عام لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں، واللاتی۔ آپ کو تھا کہ عربی زبان میں پچھلے جملے سے جوڑنے کے لیے آگے جو لفظ آتے ہیں نا، اللہ زی آپ بہت پڑھتے ہیں قرآن میں، پڑھتے ہیں نا، اللہ زی نا بہت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ زی نا یہ اسم موصول ہے۔ جب آپ اسم کی قسمیں پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے، جیسے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب اللہ زی کہیں گے نا تو وہ ایک شخص، اور واللتی کہیں گے نا تو ایک عورت، لیکن یہاں کہ واللاتی، فرق یہ بس نوٹ کر لیں، اگر لام کی لمبی کھینچیں گے نہیں نا تو جمع کو آپ نے واحد کر دیا، تو واللاتی سے مراد وہ عورتیں، جو عورتیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے، کون سی عورتیں، یاتین الفاحشتا، جو کرتی ہیں۔ یاتین کا لفظ وہی ہے جو آتا یوتی سے ہے، اوت الزکات میں ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن مراد یہاں کیا ہے، کرنا، ارتکاب کرنا۔ کس چیز کا ارتکاب کرتی ہیں، الفاحشتا۔ الفاحشہ کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے، فاحاشین سے، الفحش کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، زیادتی کر بیٹھنا، کسی بات کا حدوں سے تجاوز کرنا، گفتگو میں ادب اور احترام کی حدوں کو پھاند جانا، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ اب یہاں نوٹ کریں گے ال لگا ہے، یہ جملہ لکھ لیں، جب بھی قرآن میں لفظ فاحشہ سے پہلے ال لگے گا، یعنی یہ معرفہ کی صورت میں آئے گا، پراپر نون کی صورت میں آئے گا، تو اس سے مراد زنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خالی فاحشہ جو ہے نا، یہ کسی بھی بے حیائی کے لیے آ سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے۔ قرآن پاک میں لفظ جو فخش ہے نا، وہ عدل کے مقابلے میں بھی آیا ہے، قسط کے مقابلے میں بھی آیا ہے، یعنی انصاف کا اپوزٹ، پھر اسی طرح قنتا، عاجزی یا قنوت جس کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں بھی آیا ہے۔ تو فاحش کہتے ہیں عربی زبان میں حد سے گزرنے والے شخص کو، لیکن یہاں الفاحش آئے تو اس سے مراد زنا ہے۔ اب یہ کون سا ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ایک سٹریچ میں کیا بننا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ قرآن کا انداز دیکھیے کیسے ڈھکا چھپا ہے، کھول کے نہیں بیان کیا کہ جو زنا کریں، بس کہہ دیا تمہاری عورتوں میں۔ اور نسائکم میں کم کیا ہے، مسلمان عورتیں، یہ بھی لکھے گا، سارے احکامات مسلمانوں پہ لاگو ہیں، کافروں کو نہیں اللہ نے پوچھنا، کافروں سے بس ایک ہی بات پوچھنی ہے، بتاؤ تمہارا رب کون تھا، دیٹس اٹ۔ تو کبھی آپ کی بچیاں آپ سے یہ کہیں نا کہ وائی آئی کین ڈو دس، میں کیوں نہیں کر سکتی، میری دوستوں کرتی ہے، تو اس کا جواب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کرو کیا، ہو گیا گناہ۔ یعنی اپنے جملوں میں سوچ لیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب کوئی عورت زنا کر لے، واللاتی چونکہ جمع ہے نا، تو یہاں آپ ساتھ ہی اس کا دوسرا معنی بھی لکھ لیجئے، لیزبین ہونا۔ جس کو انگلش آتی ہے وہ سمجھ جائے گا، اردو میں بھی بتا دیتی ہوں، دو مرد آپس میں برائی کریں نا تو اس کو ہوموسیکشولیٹی کہا جاتا ہے، ہم جنس پرستی کہتے ہیں آج کامنلی، دو مرد کرتے ہیں تو ہوموسیکشول ہے، گیئزم آج اس کا عام لفظ ہے، لیکن دو عورتیں کریں تو اس کو انگلش میں لیزبین کہتے ہیں، مجھے نوش میں نہیں آتا، لیکن مطلب وہی ہے۔ बास कहते हैं कि यहाँ वल्लाती यातीन अल्फाहिशा से मुराद, फाहिशा से मुराद जिना ही है, कि कोई भी औरतें करें, यानी ज़ाहिर है जिना जब भी होगा एक औरत होगी एक मर्द होगा, या कुछ भी इसकी और भी बिगड़ी हुई शक्लें हो सकती हैं, या फिर वल्लाती में दो औरतों से मुराद औरत का औरत के साथ गलत ताल्लुक कायम करना। क्या करो, फस तशहिदो, बस गवाह तलब करो। आप कहते हैं कि शाहिदा यश खुदू का लफ्ज़ इसमें छुपा हुआ है, अब रूट्स मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, कोई नया आएगा तो बताऊंगी। तो शाहिदा का मानी कहता है हाजिर होना, मौजूद होना, इसी से लफ्ज़ शहादत है, लेकिन यहाँ क्या है, इस तशहदा। तो याद है आपको जुमला, अलिफ सीन ता लग जाए किसी फेल से पहले तो तलब, इस्तखारा इस्तगासा, तो यहाँ क्या है, तलब करो, मांगो। किसको? अलैहिन्ना, उनके खिलाफ। अला किस लिए होता है? अगेंस्ट। शाहिद अली क्या होता है? बोले आप, साथ आपको बहुत दफा बोल दिया मैंने, शाहिद अली क्या है? सब बोले, उसके लिए गवाही दी, उसके हक में दी। जैसे मेरी अपनी बात है, मेरी बात, मैं कोई बात कहती हूँ तो मुझे किसी को गवाह लाना पड़ता है, तो ये मेरे हक में गवाही देता है। वो आता है और वो कहता है नहीं ये जो कह रही है ठीक कह रही है, तो ये शाहिद ली फॉर मी, ली फॉर होता है इंग्लिश में। और शाहिद अला क्या होता है? अला किसको कहते हैं? ऊपर, अगेंस्ट। तो बस तशहीद अलैहिन्ना से क्या मुराद हुआ फिर? उनके खिलाफ, अगेंस्ट। देन क्या? अरबातम मिनकुम, चार उनमें से, यानी जब औरतों में से कोई बेहयाई का इर्तकाब करे तो उनके खिलाफ चार गवाह तलब करो। देखिए इस्लाम का असूल, एक की बात नहीं मानी जाएगी, दो की नहीं मानी जाएगी, चार की मानी जाएगी। और ये कब होगा? लिखें यहां एक जुमला, जब जिना का फेल महफिलों में होगा, क्लबों में होगा। आप देखें ना, जानी और जानिया किसी के सामने तो नहीं ये फेल करते हैं अमूमन। तो लिखिए इस्लाम की खूबसूरती कि अगर इस्लाम में जिना की सजा सख्त है, बहुत सख्त है, सूरत नूर में हतमी सजा आएगी, तो वो ऐसे ही नहीं पकड़नी कि तुमने जिना किया पकड़ो, स्कैंडल है, जिना कर दिया, तुम्हारी बेटी उसका बेटा, वो गुलूकार वो अदाकार, इनको सबको सजा नहीं। खुले आम जब ये पब्लिक प्लेसेस पे ये काम करें और चार लोग उसके खिलाफ गवाही दें। सूरत नूर में आप पढ़ेंगे अगर तीन गवाह दे हों, चौथा नहीं आ रहा तो क्या होगा? जिन्होंने पढ़ी भी है वो बोले, फिर उनको सजा मिलेगी। किस चीज की? हद कजफ। कजफ क्या है? झूठी तोहमत लगाने का। सारे इवनिंग स्पेशल और सारे स्कैंडल फैलाने वाले मीडिया ब्लिटन जो है वो बंद हो जाए अगर इसे एक आयत पे अमल करें, क्योंकि जिसने किसी के खिलाफ बात की और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गवाह ना ला सका तो उसको उल्टी मार पड़ेगी। जानी को तो 100 कोड़े पड़ने थे, इसको तो 80 पड़ेंगे। बहरहाल तो चार गवाहों को रखा जाए। फाइन शहीदू, फिर अगर वो गवाही दे दें, यानी वो गवाह कहें कि हमने जिना के फेल को अपनी आंखों से होते देखा, इशारा नहीं, किनाया नहीं, हत्ता के एक हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने इतना वाजे जुमला बोला जो मैं यहां नहीं बोल सकती कि क्या तुमने इस तरह उस औरत से ताल्लुक कायम किया था? कहीं तुम उसको बोसा देने को तो तुम जिना नहीं कह रहे, कहीं उसको टच करने को तो जिना नहीं कह रहे, पूरा उसके अंदर लफ्ज है। जब यकीन हो गया कैसे दे दे, तो अब क्या किया जाए? यहां लिखिए, अब यह है इब्तदाई सजा, फाम सिकू हुन्ना, फिर रोक लो उनको। किन को? वही जो ऊपर थी, अल्लाती या तीना थी, उन औरतों को रोक दो, फिल बुयूती, घरों में। ये थी खत्मी सजा। किसी का जिना साबित हो जाता इब्तदा इस्लाम में, चार लोग उसकी गवाही दे देते, तो क्या किया जाए? उन औरतों को उनके घर में ही छोड़ दो, क्योंकि औरत के घर से निकलने से फितना फैलता है, बेहयाई, बुराई, बदकारी तभी फैलती है जब औरतें बाहर और मर्दों के साथ इख्तलात होता है। तो घर में रहेगी, अंदर ही रहेगी, कब तक घर में रहेगी? हत्ता यतवफ्फाहुन्नल मौत, जहां तक इनको मौत आ जाए, यानी मौत ले जाए, इसी हालत में इनकी जिंदगी का खात्मा हो जाए। एक सूरत, बात वाज़े, जिसको आज की जुबान में क्या बोलते हैं? उम्र कैद, जेलों में डालने के बजाय उनके घर में डाल दो, ये पहली सूरत थी। या औ यजअलल्लाहु लहुन्नसबीला, या फिर अल्लाह इनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। यानी इससे क्या मुराद है? कि अल्लाह इस हुक्म को बदल दे। और जब सूरत नूर नाजिल हुई, इब्तदाई हुक्म उसमें आया कि मर्द और औरत को बदकारी करने पर 100-100 कोड़े लगाए जाए, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने सबील निकाल दी। बात वाज़े, पहले कोड़े नहीं थे, बस घर में बंद कर दो, या फिर अल्लाह हुक्म बदल दे। इब्तदाई दौर में यही रहा और ये निस्बतन आसान था, कि औरतों को जैसे आज भी देखे ना, अल्लाह ना करे किसी की बहू बेटी ऐसा जुल्म करे तो घर के जो समझदार होते हैं कहते हैं खबरदार घर से बाहर निकली तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। तो अच्छी बात है, घर की औरत घर में ही रहे तो बेहतर होती है। तो ये चीज हुई तो बात कह दिया कि ठीक है खत्म, या फिर रास्ता निकला है। और वो रास्ता कब निकला था? जब सूरत नूर की इब्तदाई आयतें नाजिल हुई थी। चलिए ये आयत पूरी हुई, नेक्स्ट पे चलते हैं क्योंकि दोनों के साथ ही मिलके आप बात समझेंगे। पहली आयत में क्या था? वल्लाती, दो औरतें, अब उसका ऑपोजिट है, इसको भी नोट करें, वल्लजानी। देखिए ग्रामर को अगर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब, और तरीके से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुरान के लफ्जों में कितना हुसन है। वहां था वल्लती, यहां है वल्लजान। इसके भी दो तर्जुमे किए जाएंगे। वल्लजान क्या हुआ? वल्लजी की जमा, वो एक मर्द है तो वल अल्लजी, दो मर्द हैं तो क्या हो जाएंगे? वल्लजान, दो मर्द। वहां अगर लेस्बियनिज्म था ना, दो औरतों का आपस में ताल्लुक कायम करना, या जिना, दोनों मिसालें, तो इधर भी दोनों ही हैं। दो मर्द आपस में ताल्लुक कायम करें, हम जिंस परस्ती या गेइज्म आज का खूबसूरत नाम है उसके लिए, तो क्या करो? या तिया निहा मिनकुम, तुम में से दोनों अगर करें ये काम तो क्या करो? फाजू हुमा, तो दोनों को ईजा पहुंचाओ, सजा दो। यानी बदकारी करने वाला एक मर्द और एक औरत हैं दोनों, मिनकुम, तुम में से, यानी मुसलमानों में से, तो उनकी तौहीन करो, जलील करो, मारो पीटो, उनको समझाओ। फइन ताबा, या फिर अगर वो तौबा कर लें दोनों। देखिए ताबा में जो बा की अलीफ है ना, इसको खींचना पड़ेगा आपको, फिर दो बनेंगे। खाली लफ्ज लिखे ना ताबा, फम्मा मन ताबा, ताबा उस एक शख्स ने तौबा की, ही रिपेंट। बट यहां क्या है? ताबा, बा की अलिफ बता रही है कि ये दो लोग हैं, ठीक है? तो मतलब क्या कि दोनों तौबा करें। और तौबा क्या होती है आप सब जानते हैं, शर्मिंदगी, अपने किए पे शर्मसार होना, फिर बस खत्म नहीं। व असलहा, हा को भी लंबा करेंगे, और दोनों इसलाह करें। किस चीज की? अपनी हालत को बदलें, बुरी करतूत छोड़े। ये नहीं कि पिछले पे माफिया मांगे और आगे से उसको दूसरी तरफ कर दे, नहीं। असलहा, तो क्या करो? फारिदु अनहुमा, फिर उनसे मुंह फेर लो, यानी उनको शर्मिंदा ना करो, ताने ना दो, उनको इधर उधर से ऐसी बातें कहकर और ही ना पीछे ले जाओ। और सुलह का लफ्ज असलहा का मानी आपको तो बहुत मानों में आता है, इसलाह का लफ्ज भी इसी में है, सुलह का लफ्ज भी इसी में ही है। हालात और वाकयात का सही हो जाना इससे मुराद होता है, चीज़ों को जिस तरह होना चाहिए वैसे ही होना। मुनासिब का भी इसमें मानी आता है, दुरुस्त का भी आता है, बिल तरतीब, ठीक होना, ये सारे मानी इसमें आ जाते हैं। तो कहा कि इसलाह कर ले, यहाँ सिंपल सा मानी इसका आप लिख लें कि जो कर रहे थे बुरे फेल वो छोड़ दें, तो फिर तुम उनको पीछे कर जाओ उनसे। इन्नल्लाह काना तव्वाब रहीमा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाले और रहम फरमाने वाले हैं। तो ये थी इब्तदाई सजा जिसके अंदर ये सारी बातें हुईं। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम आगे गया, लोगों के जहनों ने कबूल किया, तो अहकामात आखिर में फिर हदूद में बदल गए। लिखिएगा, ये हुक्म है लेकिन बाद में हदूद नाफिज हो गई। हदूद किसको कहते हैं? हद जो है ना, ये इस्लामिक लॉज का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हर वो सजा, लिखे हर वो गुना जिस पे अल्लाह ताला ने सजा खुद बता दी है उसको हद कहते हैं। चोर की सजा हाथ काटना, शराब की सजा कोड़े हैं अगर, और जिना की सजा कोड़े हैं, शादीशुदा जिना की बदकारी की सजा अगर रजम है, तो इनको हदूद कहते हैं। आपने कभी उर्दू में एक लफ्ज सुना है, हदूद और ताजीरात? सुना है, पाकिस्तान के अखबारों में तो आम होता है। ताजीरात क्या होती है? सजा अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, हाकिम वक्त पे छोड़ दी, ठीक है? तो यहां मुराद क्या है कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरे लीगल रूल्स बनते हैं कि ये ऐसे ही, जैसे एक नया नया इदारा शुरू होता है तो शुरू में चीजें ऐसे कच्ची पक्की होती हैं, लोग मानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर सिस्टम डिवेलप होते हैं, फिर रूल्स बनते हैं, फिर उसके लिए पेपर वर्क होता है और एक चीज अपनी फिर अरूज पे पहुंच जाती है, ठीक है? ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद ये पिछले हुकूम खत्म कर दिए गए और दूसरी बातें खत्म कर दी गई। अब यहां देखिए कि इतनी सी बात को करेंगे क्योंकि आगे तौबा की बात आ रही है, तो चंद बातें इसमें से आपके सामने रखना चाहूंगी। याद रखिए कि इस्लाम ये चाहता है कि हर जरूरत सही जगह से पूरी हो। हमारी शरीयत है ना जो, इसके पांच मकासद हैं, मकासद शरिया कहते हैं इसको। यानी कोई पूछ सकता है कि इस्लामिक लॉज या इस्लामिक शरीयत या कुरान किस बेस पे है, तो इस्लाम जिस बुनियाद पे, जैसे आप कह सकते हैं ना कि आपके इस नूरुल कुरान के बायलॉज क्या हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती, कल कोई आपसे बोलते हैं ये नूरुल कुरान क्या है, क्या बोलते हैं इसको, या वेथ हेक्टर जो भी है। अब कोई आपसे पूछता है इस्लाम के वेथ हेक्टर क्या हैं, जैसे नॉन मुस्लिम पूछ सकते हैं कि इस्लाम में बस सजाएं सजाएं हैं, इस्लाम बस हर खुशी का कातिल है, तो इस्लाम के पांच बड़े बड़े मकासद हैं, उसमें एक इस वक्त लिख लें, हिफाजत इज्जत। इस्लाम चाहता है हर बंदे की हिफाजत हो, नस्ब की हिफाजत, हर पैदा होने वाले बच्चे का नस्ब महफूज हो, उसको पता हो मेरा मामू कौन है, मेरा चचा कौन है, मेरी खाला कौन है, मेरी फुफो कौन है, मेरा बाप कौन है और माँ कौन है। ठीक है, तो इस्लाम ने ये जो जिना पे इतनी बड़ी बड़ी बातें की है ना, ये उस एक मकसद को पूरा करती है। इसी तरह शराब हराम है तो उसमें हिफाजत अकल है, इस्लाम नहीं चाहता कि हम बहकी बहकी बातें करें, पागल हो जाए। और आपको पता है कि जितनी भी चीजें इस्लाम में हराम है ना, आप देखिए उसमें किसी एक चीज का टूटना है। शराब से अकल खराब हो जाती है, जिना से नसब खराब हो जाता है, तीसरी जो इस्लाम का मकसद शरीयत है वो हिफाजत माल है, चौथा मकसद है जान की हिफाजत, कत्ल के बदले कत्ल है। ये जितनी हदूद है ना, इन सब के पीछे एक मकसद है, इस्लाम चाहता है कि जिना का दरवाजा बंद किया जाए। तो यहाँ फाहिशा का लफ्ज बोलकर जिना भी बंद कर दिया, और इसमें अल्लाह ताला ने हम जिंस परस्ती को भी डिस्कस करके सब चीजों को खत्म कर दिया। एक सवाल लोग कर सकते हैं, देखो मैंने खुद लोगों से सुना है वल्लाह ही से एक आयत को कि उन औरतों को घर में बंद कर दो, कहते देखो और इस्लाम औरतों की आजादी का खिलाफ है। आपने पाकिस्तान में कुछ एनजीओ का नाम सुना होगा, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे तबके में जाए ना, तो हकूक निस्वा, विमेन राइट्स के नाम पे वो इस किस्म की आयतों को उल्टा कोड करते, देखो देखो इस्लाम क्या कह रहा है कि इन औरतों को घरों में बंद कर दो, और चादर और चार दीवारी का लफ्ज सुना, ये वो इन आयतों की मिस इंटरप्रिटेशन है। अब मुझे बताइए कि इस्लाम हर औरत को कह रहा है घर में बंद कर दो। मिसाल है, यहाँ कोई वायरस फैल जाता है और किसी इंसान को वो वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अब इसको घर में रखें, इस बच्चे को बाहर ना लेके आए, इसका उधर जाएगा, कहते हैं ना। तो जो जिना वाली और लड़की है या मर्द है या जिसकी सोचें गंदी हो चुकी है, वो भी एक किस्म का वायरस बन जाता है। तो अल्लाह ने कहा के रखो इसका चादर चार दीवारी से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरी बात देखिए कि यहाँ एक और एतराज बहुत पढ़े लिखे लोग करते हैं, ये जी गवाही जो देनी है ये सिर्फ मुसलमानों से क्यों दिलवानी है, गैर मुस्लिम की गवाही इस्लाम नहीं मानता। बड़ी सिंपल बात है, आप नॉर्वे में रहते हैं, अगर आपके पास नॉर्वेजियन पासपोर्ट है आपके और राइट्स हैं, और अगर आपके पास पाकिस्तानी है वीज़ा है तो आपके राइट्स फर्क है ना। तो जब वो इस्लाम को कोई अल्लाह कोई नहीं मानता, तो उसकी गवाही आप ज़बरदस्ती क्यों लेंगे। फिर एक अगला सवाल ये है कि औरतों को घर में बंद रखा जाए यहाँ तक कि इनको मौत आ जाए, तो क्या ये ज्यादती है, ऐसा है, ये क्यों है, ऐसे क्या है। तो इसका जवाब लिखिए कि ये एक वक्ती हुक्म था, टेम्परेरीली एक फौरी हाल था। आप लोगों ने पाकिस्तान का जो निज़ाम देखा होगा, तो जब किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है, मुलजिम जिसको कहते हैं आप, तो उसको क्या करते हैं भला, जेल में डालते हैं ना, फिर मुकदमा चलता है, फिर कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट कहती है कि इसने नहीं किया तो बाइज्जत रहा होगे, और कोर्ट कहती है इसने किया तो अब इनको सजा मिलेगी कितनी, 6 साल की, तो वो क्या बन गए, मुजरिम। मुलजिम कौन जिस पे इल्ज़ाम लगा है, और मुजरिम कौन, क्रिमिनल जिसने ये किया है। ये इन औरतों को घर में रखने का रूल ऐसे ही है जैसे अब इन पे मुकदमा चलेगा, फिर उसके बाद औया जल्लल्लाहु लहुन्ना सबीला, और वाकई फिर फैसला अल्लाह ने सुना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, कि लहुन्ना सबीला शादीशुदा के लिए रजम और कंवारे के लिए कोड़े की सजा है जब वो जिना करें, बुखारी की रिवायत है। यानी सबील ये निकली थी बाद में कि शादीशुदा लोग जिना करेंगे तो उनको रजम कर दिया जाएगा, और कवारे करेंगे तो उनको कोड़े मारे जाएंगे। इसी तरह से मुस्लिम की रिवायत है हजरत उबादा बिन सामित से, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझसे अहकाम सीख लो, मुझसे अहकाम सीख लो, 3 बार आपने ये बात कही। ये ऐसी है जैसे कोई उस्ताद कहता है सीख लो मुझसे, सीख लो मुझसे, सीख लो मुझसे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने औरतों के लिए सबील पैदा कर दी, वो ये है कि कंवारा कंवारी के साथ बदकारी करे तो 100 कोड़े, और जिला वतनी है यानी वो फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा उसको, वरना तो वो दोबारा वही गुनाह करेंगे, और शादीशुदा मर्द شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کریں تو ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو زنا کی سزا دی گئی؟ بالکل دی گئی. رجم کی سزا دی گئی تھی، مائس نام کے ایک صحابی تھے اور غامدیہ قبیلے کی عورت تھی، ان دونوں سے جو زنا ہوا تھا اس کو سزا دی گئی تھی. ایک واقعہ میں سوچتی ہوں اگر آج یہ قانون آ جائے، اور یہاں ایک نوٹ کیجئے، یہ تدریج بھی اس لیے تھی کہ اگر شروع میں یہ سزا ہوتی، آپ ایک سوسائٹی ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 95% مرد زنا میں ملوث تھے، ایک دم حکم آ جاتا کہ جی رجم کر دو اور قتل کر دو، اس ملک کے 95% مرد ذبح ہو جاتے. یہ نہیں کیا، لیکن گنتی کے لوگ، ایک دو واقعہ جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوا، اور وہ زنا ہوا تو عورت گھر نہیں گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئی. وقتی جذبہ ہو گیا، جذبات ہے، شیطان ہے، نفس ہے، لیکن گھر نہیں گئی. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس گناہ میں ایسی چلی گئی اور خود مر گئی تو آخرت کی پکڑ ہے. یہ کردار پیدا کرنا ہے. اس طرح مائی صحابی تھے، انہوں نے بھی زنا جب ان سے ہوا تو اللہ کے نبی کو جا کے انسسٹ کیا کہ مجھے سزا دیں تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں. اسی طرح آپ کو پتا کہ یہود بھی مدینہ میں رہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ایک یہودی اور یہود نے زنا جب آپس میں کیا تو ان کو بھی رجم کی سزا دی. بھلا کیوں دی؟ کیا ان پہ اسلامک لاز امپوز کیے؟ نہیں. تورات میں بھی شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا رجم ہی تھی. آج یہ قانون یہود اور نصارہ لگائیں تو ان کی تو نسلیں ختم ہو جائیں. وہ جتنے جنگوں اور بموں میں مارتے ہیں اس سے زیادہ تو وہ ختم ہو جائیں. تورات میں یہی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے چونکہ چینج کر لی، ڈھیلے ہو گئے، تو قرآن نے اسی کو دوبارہ ری انفورس کر دیا. یہ مراد ہے. اور جب معاملہ گورنمنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے نا، پھر اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. چلے ایک سوال کر کے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آج اگر آپ کو پتا ہے فلاں عورت ہے وہ ایسے گندے کاموں میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی مرد پھنسا ہوا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی دوست ہے، اب کیا کریں؟ ہمیں پتہ لگ جائے، اللہ نہ کرے ہم خود ایسے ہوں. دوسری بات ہے اب کسی کا ہمیں پتہ لگ گیا، آپ ڈھونڈیں اور جلدی سے اس کو یہ سزا دلوائیں تاکہ وہ پاک ہو جائے. کدھر لگے گی سزا؟ کہاں امپلیمنٹ ہوگی؟ ناروے کی حکومت نہیں دے گی، آپ پاکستان میں جائیں گے پاکستان نہیں دے گا، سعودی عرب میں رہیں گے تو پھر وہاں اس حد تک سزائیں موجود ہیں. آج اگر کسی کا معاملہ ہے نا تو یہ ہے اس کا علاج، خاموشی. اس کا تزکیہ کریں، اس کو سکھائیں، بتائیں، قرآن سے جوڑیں، سچی توبہ کر کے کسی سے تذکرہ نہ کریں، نہ کسی کی بیٹی، نہ بیٹے، نہ مرد کا. عورت مرد میں دیکھے، وہ سارے حکم آگے آنے ہیں، لیکن یہاں میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی 13 سال مکہ والے پیدا کریں، مردوں کو قرآن سنائیں، گھروں میں دین کے احکامات کھلے، اور صرف یہ حکم نہ سنائیں، سورہ فاتحہ سنائیں، اللہ کی بڑائی، بندے کی بندگی، عاجزی، تو انسان بدلتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ایسی باتوں کو کبھی اچھالنا نہیں چاہیے، سکینڈل نہیں بنانے چاہیے، اخباروں کی شہ سرخیاں نہیں بنانی، اور فیس بک پہ ان کی پکچرز اور گندی ان کی تصویریں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، اس کے بعد پھر کوئی روک نہیں سکتا.